नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, संसार का हरेक व्यक्ति अपना सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास चाहता है और उसमें भी विशेषकर युवा वर्ग अपना व्यक्तित्व बहुत ही निखारना चाहता है, उसे संवारना चाहता है। यही कारण है कि हम चर्चा कर रहे हैं युवा वर्ग के लिए कि वो किस प्रकार अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। कल हम लोगों ने चर्चा की शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में कि किस प्रकार आदतें, व्यक्ति का स्वास्थ्य और साथ ही उसका वेशभूषा किस प्रकार से उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं और किन बातों पर वो ध्यान रखे। इसी चर्चा को हम आज भी आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दाता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है।
थैंक्स
दाता जी। व्यक्तित्व की जब बात आती है तो हर एक व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कैसा भी है, चाहे गरीब है, अमीर है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति धर्म का है, वो चाहता है कि वो एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बने। कल आपने शारीरिक व्यक्तित्व की बहुत सुंदर सुंदर बातें कही थी और एक बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो चर्चा अधूरी रह गई थी, नींद। नींद एक बहुत आवश्यक पहलू है। कई बार हम हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम बहुत ही थके थके से महसूस करते हैं अपने आप को और दूसरों को भी, हमारे व्यक्तित्व में कोई उमंग और उत्साह दिखाई नहीं देता। तो नींद के विषय में भी आप जरूर थोड़ा प्रकाश डालें।
बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है मनुष्य जीवन का नींद, और नींद में भी बहुत गहरी नींद, साउंड स्लीप
जी।
क्योंकि अगर बहुत स्वप्न आते रहें, नींद में भी मन इधर उधर भटकता रहे, तो बहुत लंबा समय नींद करने के बाद भी मनुष्य फ्रेश नहीं होगा। और जब वो उठेगा तो सुस्ती को लिए उठेगा, थकान के साथ उठेगा। वो कहेगा मैं 10 घंटे तो सो लिया, फिर भी मुझे बहुत थकान है, डॉक्टरों के पास जाएगा। लेकिन वास्तव में गहरी नींद हमारे ब्रेन को एनर्जी देती है, और ब्रेन एक वंडरफुल रचना है इस संसार की, इस देह को चलाने की। और देखिए, हर मनुष्य के पास एक ब्रेन है, मैं कहूंगा बहुत सुंदर ब्रेन है, उसको एनर्जेटिक रखना ये भी एक सुंदर पर्सनालिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो अच्छी नींद, कल भी हमने चर्चा की कि 10 से और 2 बजे तक की जो नींद है ये वास्तव में नींद का समय है। प्रकृति भी उस तरह की है उस समय। अगर 4 घंटे किसी को गहरी नींद आ जाए तो वही नींद उसकी दूसरे समय की 8 घंटे नींद के बराबर हो जाती है। तो विद्यार्थियों को, युवकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 10:30 तक अपनी दिनचर्या को पूर्ण करें, सो जाएं, और फिर सवेरे उठकर जो बाकी तैयारी करनी है वो करें।
आजकल चाहे वो बड़े शहरों की बात हो, कस्बों की बात हो, युवा वर्ग में एक प्रचलन, विद्यार्थियों में एक प्रचलन चल पड़ा है कि वो देर रात तक जागते हैं, उसके बाद देर सुबह उठते हैं। तो इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व में भी कई बार इस बात का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और कैसे इसमें परिवर्तन लाएं।
हाँ, बिल्कुल, न केवल युवकों में लेकिन बड़े भी बहुत लोग 12-12 बजे तक होटलों में जा रहे हैं, फिर देर से सो रहे हैं 1 बजे तक, फिर 9-10 बजे तक सो रहे हैं। तो इन सब चीजों का इफेक्ट उसके ब्रेन पर बहुत बुरा पड़ता है। विद्यार्थी मान लो रात को 12 बजे 1-2 बजे तक स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि सारा दिन स्टडी करने के बाद उनका ब्रेन थक गया होगा। अब वो पढ़ रहे हैं ये सोच के कि हम और तैयारी कर लें, ये भी तैयार कर लें, ये भी तैयार कर लें, लेकिन ब्रेन तो रेस्ट चाहता है, उस पर हम एक दबाव डाल रहे हैं, तो वो टेंशन में भी है ब्रेन, तो इससे कभी भी अच्छे परिणाम नहीं होंगे। और उसके बाद जो नींद भी आएगी, अगर गहरी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, तो ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और नहीं आई तो फिर ब्रेन में कठिनाई पैदा होंगी, लोगों को जिसको कहते हैं अटैक हो जाता है ब्रेन पर, कुछ भी उसकी एफिशिएंसी नष्ट हो जाती है, ऐसा अनुभव होगा। इसलिए सहज समाधान के हर मनुष्य को अपनी दिनचर्या को फिक्स करना चाहिए। ये भी नहीं कि रात को देर तक टीवी देखकर सो रहे हैं। देखिए, जो लोग टीवी देखकर सोते हैं उनको भी गहरी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो सीन उनके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो जाएंगे और वो नींद में उभरते रहेंगे, कुछ चिंतन जैसे कि चलता ही रहेगा। इसलिए लक्ष्य रख लेना चाहिए, 10-10:30 बजे सब समाप्त, और कुछ अच्छे चिंतन के साथ निद्रा देवी की गोद में हम जाएंगे तो नींद बहुत गहरी होगी, सवेरे बहुत फ्रेश उठेंगे और इससे ये जो बाकी समस्याएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी।
बिल्कुल, कई बार हम ये मान के चलते हैं व्रता जी कि अब ये हमारे जीवन का अंग बन गया है और हम परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। तो जरूर युवा वर्ग को भी यदि अपना सर्वांगीण विकास करना है, अपने शारीरिक व्यक्तित्व को निखारना है, तो जरूर इस आदत में भी थोड़ा परिवर्तन अवश्य लाएं कि जल्दी सो जाएं और थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास।
परिवर्तन के लिए मनुष्य को तैयार रहना ही चाहिए पूरा जीवन, जो भी चीजें उसके काम की हों। ये तो एक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, कहीं उसे विचारों का भी परिवर्तन करना पड़े, कहीं उसे अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़े, कहीं उसे अपने संस्कारों में भी परिवर्तन करना पड़े, तो परिवर्तन के लिए एक समझदार व्यक्ति को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भी तो बदल रहा है। अगर हम उन्हीं चीजों को अपनाते चलेंगे जो अब से 30 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, तो निश्चित रूप से हम दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए परिवर्तन के लिए तैयार हों और जरा सवेरे उठकर तो देखें। ठीक है, जो राजयोग का अभ्यास करते हो तो 4 बजे उठेंगे, लेकिन आम लोग सूर्योदय से पहले उठें, 5 उठें, 5:30 उठें और देखें प्रकृति कितनी सुंदर है, ये परमात्मा की रचना कितनी सौंदर्य से भरपूर है और उसका मनुष्य के ब्रेन पर, उसके व्यक्तित्व पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति यदि सवेरे उठकर आधा घंटा आराम से टहल ले, वॉकिंग करे और कुछ सुंदर चिंतन में वो समय बिताए, तो वो पाएगा कि जैसे उसने अपने को चार्ज कर लिया सवेरे सवेरे और ये चार्ज्ड स्थिति सारा दिन उसको सुख में व्यतीत करने में मदद करेगी।
वैसे भी एक इंग्लिश में कहावत भी है ब्रता जी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बात बहुत सोच समझ करके ही कही गई होगी कि जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना, ये स्वास्थ्य के लिए भी और अन्य शारीरिक जो हमारे क्षेत्र हैं या हमारे विकास के जो क्षेत्र हैं उन सब के लिए बहुत
आवश्यक, उनके लिए भी आवश्यक है। देखिए हेल्दी लाइफ के लिए मनुष्य जल्दी उठेगा, उसके पास 2 घंटे हैं, वही व्यक्ति 9 बजे उठ रहा है और उसे फटाफट काम पर जाना है, तो एक तो उसने टेंशन को इनवाइट कर लिया, दूसरा उसके पास अपने लिए समय नहीं रहा कि वो आधा पौना घंटा व्यायाम में दे, कुछ पठन पाठन में दे, कुछ अच्छे चिंतन में वो लगाए, ऐसा समय उसके पास नहीं बचता। जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ जाएगा वो अपने को सारा दिन बहुत रिलैक्स फील करेगा, हल्का फील करेगा और उसके पास समय होगा अपने लिए। पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सवेरे के समय, क्योंकि मनुष्य का मन शांत होता है इसलिए उसकी बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचाई पर होता है, वो थोड़ा पढ़ेगा ज्यादा ग्रहण करेगा और ये एक सुंदर तरीका हो जाएगा अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का, अपनी मेमोरी पावर में विकास करने का।
आपने एक बहुत सुंदर बात कही ब्रता जी कि एक तो सुबह उठना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि हम उस समय कुछ आध्यात्मिक पठन पाठन अवश्य करें, एक अच्छा चिंतन अवश्य करें, क्योंकि आमतौर पर आज देखने में ये आता है कि जैसे ही व्यक्ति उठता है, भले वो 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, जैसे ही उठता है या तो टीवी ऑन कर लेता है या न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाता है कि आज का समाचार क्या है, तो जैसे ही उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पहले से ही चली जाती हैं तो शायद उसके व्यक्तित्व पे, निजर्या पे भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज बहुत अच्छी तरह से ये समझ ले वो और जान ले कि मुझे सुबह उठ करके आध्यात्मिक पठन पाठन से ही दिनचर्या की शुरुआत।
मैं ये इसी बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि आम लोग इसलिए भी जल्दी नहीं उठते कि वो करें क्या,
राइट,
तो वो बोर हो जाते हैं कि इतना लंबा समय कैसे पास करें। तो एक सुंदर प्रोग्राम हर मनुष्य के पास सवेरे के लिए 2 घंटे के समय को यूज करने का होना चाहिए। भाई हम आधा घंटा घूम के आएंगे, हम आधा पौना घंटा अच्छी तरह व्यायाम करेंगे, हम आधा घंटा कुछ सत साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर भले ही टीवी आदि भी देखेंगे तो निगेटिव चीजें हमारे ब्रेन में एंटर नहीं करेंगी। तो एक सुंदर प्रोग्राम लेकर यदि मनुष्य चलेगा तो उसका ये समय वास्तव में उसके लिए अति अति कल्याणकारी हो जाएगा।
जी, वैसे भी संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं भ्राता जी, वो सब बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। जितने भी विचारक हैं, विद्वान हैं, वो भी सुबह के महत्व को समझते हैं। तो जरूर अपने शारीरिक व्यक्तित्व को श्रेष्ठ करने के लिए हमारे युवा वर्ग को भी सुबह उठने की आदत अवश्य डालनी
चाहिए। इसमें ये भी जान लेना चाहिए कि प्रकृति में ही एक ऐसा बैलेंस है कि सोने का जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स हैं ये इस समय में प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। ये बात एक डीप फिलोसॉफी की है, बहुत लोग इसे जानते नहीं, कि सूर्योदय से पहले 2-3 घंटा पहले प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है। अगर मनुष्य उस समय को सोने में व्यतीत कर रहा, वास्तव में वो सोना भी नहीं होता, एक तरह की सुस्ती जैसी होती है, तो उन चीजों से वो वंचित है। तो जरा सवेरे उठकर प्रकृति जो कुछ हमें दे रही है उसका हम लाभ उठाएं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को चमकाने के लिए बहुत सुंदर बात होगी।
तो भ्राता जी, शारीरिक व्यक्तित्व में जैसे हम लोगों ने चर्चा की, एक तो वेशभूषा पे ध्यान दिया जाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव हो, इसी प्रकार हमारी कुछ बहुत सुंदर और श्रेष्ठ आदतें हो, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो, जैसे अभी आपने कहा हमारी दिनचर्या भी बहुत व्यवस्थित हो। तो ये तो भ्राता जी रही शारीरिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें। आपने व्यवहारिक व्यक्तित्व की भी बात कही थी, तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल?
देखिए, व्यवहार तो मनुष्य के लिए, मनुष्य का एक दर्पण है दूसरों के लिए
जी।
जैसा उसका व्यवहार होगा वैसी छाप दूसरे मनुष्यों पर उसकी पड़ेगी। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन वो व्यवहारिक न हो, उसमें रॉयल मैनर्स न हो, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, युवक देखे, जिनके पास 4-4, 5-5 डिग्रीज हैं, लेकिन उनके चेहरों पर मुरझाहट रहती है, खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती। उसको उनको इसकी भी अनुभूति नहीं होती कि वो वेल एजुकेटेड हैं तो उन्हें कुछ रॉयल्टी से रहना चाहिए, वो मैनर्स को के बारे में ख्याल ही नहीं करते हैं। तो इससे उनका जो चमकने वाला एक व्यक्तित्व है वो जैसे धूमिल हो जाता है। तो व्यवहार सचमुच एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, गांव की माताएं हमने देखी, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन ऐसी अच्छी व्यवहारिक हैं कि लोगों के दिल को अट्रैक्ट कर लेती हैं तुरंत, कि और पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि इनके पास रहेंगे तो हमें जीवन के कई गुर सीखने को मिलेंगे।
जी जी, जब व्यवहारिकता की बात आती है भ्राता जी, तो मूल रूप से बोल के माध्यम से हम व्यवहार में आते हैं। तो कई बार लोगों के बोल ऐसे होते हैं जो लोगों का जो व्यक्तित्व है वो दिखाई दे जाता है। जैसे कहा भी गया है कि हमारा शरीर एक दुकान की तरह है, मुख सटर है उसका, जैसे ये सटर खुलता है तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये जो दुकान है वो कोयले की है या हीरे की है। तो बोल बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे लोग कई बार शायद ध्यान नहीं दे पाते। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, व्यवहारिक व्यक्तित्व के लिए इसकी कितनी महत्ता है?
बिल्कुल संपूर्ण महत्व है। अगर मनुष्य बोलना ही न जानता हो तो उसकी नॉलेज का, उसकी डिग्रियों का, उसके व्यक्तित्व का मूल्य ही कितना रह जाता है। देखिए, एक बच्चा भी 2 साल तक बोलना सीख जाता है, पर कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं कि 50 साल में बोलना नहीं सीखे। जैसे आपने उदाहरण दिया मुख को सटर कहा, मैं इसको एक और बात कहूंगा। ये बॉडी हमारी एक सुंदर फैक्ट्री है
जी।
और मुख इसकी चिमनी भी है, तो जिस चिमनी से कई कई लोग धुआं ही निकालते रहते हैं, मुंह खुला और धुआं निकला तो लोग परेशान होते हैं,
दूर भागने लगते हैं,
घुटने लगेगा ना दम लोगों का, तो उनके शब्द सुन के हर व्यक्ति परेशान होने लगता है और लोग यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति चुप ही रहे तो अच्छा ही है। तो सचमुच बोल हमारे रॉयल मैनर्स के प्रतीक हैं। बोल किसी के महावाक्य बन जाते हैं, किसी के बोल वरदान बन जाते हैं, किसी के बोल लोग टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं, सदा ही सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और किसी के बोल कटुता से भरपूर हो जाते हैं, किसी के बोल दूसरों को श्रापित करने वाले होते हैं, किसी के बोल अहंकार से भरे हुए नजर आते हैं, तो ये अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं। तो हम अपने बोल में बहुत मधुरता लाएं, उसमें क्रोध जरा भी ना हो, बोलने के जो शब्द हमारे हों उनका भी चयन बहुत सुंदर ढंग से हम करें। कई बार लोग, जैसा आपने देखा होगा, आपको भी कई लोग मिलते होंगे, कई लोग बड़े भी और छोटे भी, भाई हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो जो बात कहनी सीधी सीधी कहते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये एक रॉयल पर्सनैलिटी नहीं है। अच्छी बात अच्छे शब्दों में कहना
जी,
सत्यता को सभ्यता पूर्वक कहना, कौन बात किस समय पर कहनी है इसमें विवेकपूर्णता का परिचय देना, ये परम आवश्यक है। हर बात हर जगह बोल देना तो लोग ऐसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करते हैं और उससे दूर भागते हैं, उसके व्यक्तित्व का आकर्षण किसी को भी नहीं होता है। इसलिए हम इतना ध्यान दे दें कि हमारे बोल बहुत रॉयल हों, हमारे बोल बहुत सुखदायी हों, हमारे बोल दूसरों के लिए प्रोत्साहन हो, प्रेरक हो, ताकि किसी को कोई भी समस्या हो जाए, कोई भी टेंशन हो जाए तो हमारे पास आ जाएं और उन्हें विश्वास हो कि ये दो बोल बोलेंगे और हम रिलैक्स होकर आएंगे।
वैसे भी कहते हैं ब्रदर जी, कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, लेकिन कौवे की आवाज कोई नहीं सुनना चाहता क्योंकि वो कर्कश है, और वहीं कोयल की आवाज सभी सुनना चाहते हैं क्योंकि वो मधुर है। तो हम अपनी वाणी में इस मधुरता को अवश्य शामिल करें यदि हम अपने व्यावहारिक व्यक्तित्व को बहुत श्रेष्ठ और महान बनाना चाहते हैं। तो ब्रदर जी, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है। एक राजा के पास ज्योतिषी जी आए, तो राजा ने अपना हाथ दिखाया और कहा कि ज्योतिषी जी बताइए कि इस हाथ में क्या है। तो उन्होंने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड की जवाब बात कही आपने, ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपकी हाथ की रेखाएं कहती हैं कि आपका पूरा खानदान आपकी आंख के सामने ही मर जाएगा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मेरा खानदान बाद में मरेगा, पहले
इसको जेल में डालो।
जी, वही एक मास के बाद दूसरा ज्योतिषी आया और फिर से राजा ने अपना हाथ दिखाया। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी है, आपकी आयु तो आपके पूरे खानदान से बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है। तो राजा बहुत खुश हुआ, उसको धन धान्य देके विदा किया। तो बात एक ही, लेकिन सचमुच कहने का तरीका जो आपने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो कि हम बात को बहुत मधुरता पूर्वक, बहुत सभ्यता पूर्वक, बहुत शालीनता पूर्वक भी कह सकते हैं, ये शायद सीखने की आवश्यकता है।
इसमें और भी एक चीज है, देखो बोलते तो सभी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बात थोड़ी सी कहनी है, लेक्चर देंगे एक घंटा, और एक घंटे के बाद भी लोग कहेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है व्यक्ति, ये तो समझ में नहीं आया कि आखिर मतलब क्या था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लंबी चौड़ी बात को सार युक्त दो चार शब्दों में बोलकर पूर्ण कर देते हैं। ये भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाने वाली चीज है कि हम कम बोलें, संयमित बोलें, बहुत मधुर बोलें और राइट टाइम पर बोले, और शब्दों का चयन भी इतना सुंदर हो जो दूसरों को बहुत कुछ सीखने को मिले, तो बहुत अच्छा रहे।
जी, तो ये बहुत सीखने की बात है ब्रदर जी कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये भी व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीखता चलता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई लोग बहुत टकेटिव होते हैं कि बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, और सामने वाला परेशान हो जाता है कि आखिर ये व्यक्ति चुप कब होगा। हम लोग एक स्थान पे गए थे तो वहां एक बहन जी थी, उन्होंने कहा कि इसे संभल के रहना, इस भाई से, ये तो MP3 प्लेयर है। मतलब एक बार शुरू हो गया तो बस शुरू ही हो गया,
दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा,
मौका ही नहीं मिलता। तो इसमें भी शायद हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा जैसे हानि पहुंचाने वाली बात हो जाती है कि लोग हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते, हमसे दूरी बनाते चले जाते हैं। प्रति जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाणी से दूसरों को घाव देने के आदि हो जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहें?
देखिए, इसके पीछे मनुष्य का अभिमान, उसकी रिवेंजफुल फीलिंग, कुछ अपने को सबसे ज्यादा समझना, ये भावनाएं काम करती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो दूसरों को घाव दे रहा है उसको भी घाव देने वाला कोई अवश्य मिल जाएगा। किसी को हम कटु वचन बोल रहे हैं, आखिर लोग कब तक सहन करेंगे, कब तक सुनेंगे, तो कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो हमसे भी तेज तराक हो और जितने घाव हमने दूसरों को दिए हैं वो एक ही साथ हमें दे जाए और हमें सिखा भी जाए कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो वास्तव में हमें तो घाव को भरना है, सबके मरहम लगाना है, बहुत स्वीटनेस हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए, वो सब हमारे चेहरे पर भी झलकेगा। हमारा चेहरा, अगर हमारा व्यवहार श्रेष्ठ है तो हमारे चेहरे पर एक शालीनता, एक रॉयल्टी स्पष्ट दिखाई देगी और उसका आकर्षण सबको होगा ही।
जी, वो कहते हैं ना कि तलवार का घाव तो एक बार भर भी जाता है, लेकिन वाणी के द्वारा जो घाव हम दे देते हैं दूसरों को, कुछ अपना अपमानजनक शब्द बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे व्यक्ति जीवन भर याद रखता है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, तो ऐसे शब्दों से निश्चित रूप से बचना चाहिए और अपने शब्दों में जो संयम है, मिठास है या श्रेष्ठता है, वरदानी बोल जैसा आप कह रहे थे, उन बोलों का समावेश करना चाहिए। जी, तो ऐसी क्या सूची बना के अवश्य व्यक्ति को रख लेना चाहिए कि मुझे इस प्रकार के बोल बोलने हैं और इस प्रकार के बोल नहीं बोलने, क्योंकि ध्यान देने की आवश्यकता तो प्रारंभ में अवश्य पड़ेगी ही।
देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं बचपन से ही, या एक पारिवारिक संपदा उन्हें मिलती है कि वो बोल चाल में बड़े रॉयल होते हैं
जी।
लेकिन कभी कभी अगर कोई दो भाई हैं तो एक बहुत रॉयल होगा, दूसरा ऐसा ही कर्कश होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अपने में चेंज करने की इच्छा है, यदि वो समझता है मेरे बोल भी बड़े रॉयल हों, गुड मैनर्स को प्रदर्शित करने वाले हों, तो उसे अवश्य अपने को चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि ये बोल गलती उससे होगी अब एक बार गलती हो गई तुरंत उसे करेक्ट कर लें, फिर दूसरी बार दूसरी गलती हो गई उसे करेक्ट कर लें। कुछ ही दिन यदि इस बात पे मनुष्य ध्यान दे, 3 मास तक ही, तो उसके बोल में काफी सुधार आ जाएगा और ये उसके व्यक्तित्व को निखारने वाली बहुत सुंदर बात होगी।
और जैसे हम बात कर रहे थे भ्राता जी कि यदि हमें ऊपर जाना है, उन्नति करनी है, तो परिवर्तन के लिए हमेशा हमें तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं भ्राता जी, जब बात वाणी की चल रही है, कि हमारा भाव गलत नहीं होता लेकिन हमारी आवाज ही ऐसी है।
हाँ, उनकी आदत ऐसी है, एक्चुअली आवाज नहीं, वो आदतन वैसी आवाज निकालते हैं, तो भाव भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन फिर छुपाने के लिए ऐसा कह देते हैं। लेकिन हमारे शब्दों में हमारा भाव तो स्पष्ट दिखाई देता ही है, कोई कितना भी छुपाए उससे वो छुपते नहीं हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को भी बहुत निर्मल करें, शुभ भावनाओं में बदलें और अपने अहम को जरा डाउन करें। इसमें मुख्य काम कर रहा है मनुष्य का अभिमान, जो उसके मुख से ये धुआं निकलवाता है, ये गलत शब्द बोलने का धुआं, जिससे दूसरों का दम घुटने लगता है, क्योंकि आज परिवार परिवार में, संबंधों में सारे झंझट ही बोल के कारण है ना। अगर मनुष्य अपने बोल को सुधार ले तो संसार की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं तो ये कहूंगा कोर्ट में जितने केस हैं 1/3 तो बोल के कारण प्रारंभ हुए थे, ऐसे क्रिमिनल केसेस जो कोर्ट में पहुंचे। अगर सचमुच मनुष्य अपने बोल को रॉयल कर ले तो बहुत सारी बातें समाप्त।
जी, और हम देखते भी हैं भ्राता जी कि रामायण यदि हम ले लें या महाभारत भी ले लें, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, उनमें भी वाणी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का कारण बन गया था, तो वो भी आज भी हमारे जीवन में वाणी ही समस्या का कारण बन रहा है। तो निश्चित रूप से जो इस बात को समझते हैं और चाहते हैं कि वो व्यावहारिक अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास करें, बोल पर विशेष रूप से उन लोगों को,
मैं यही कहूंगा कि जब मनुष्य बोले जिसका व्यक्तित्व सुंदर है या जो अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना चाहते हैं, जब वो बोले तो उनके मुख से अमृत धारा बहे, उनके मुख से जैसे पुष्प झड़ते हों, सुगंधित पुष्प जो सुनने वालों के मन को भी सुगंधित कर दें, निर्मल कर दें, दूसरों की टेंशन को भी हर लें, उनके दुखों को कम कर दें, उनके जीवन में छाए हुए निराशा के काले बादलों को एकदम बिखार दें, बिखरा दें और एकदम उमंग उत्साह से जीवन भर दें, ऐसे सुंदर बोल वास्तव में बोलने वाले की बहुत शोभा है।
एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं तो सबके साथ मीठा बोलता हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बार बार मुझे टीज करता है, मेरा अपमान करता है, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, मेरे साथ गुस्से से व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे मधुरता से पेश आ सकता हूँ?
बिल्कुल, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है संसार में कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे जलते हैं, हमें आगे बढ़ता देखकर उनसे सहन नहीं होता है, तो वो इस तरह की बातें हमसे करते हैं। इसमें हमारी सहन शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी स्पिरिचुअलिटी में है और वो है सेल्फ एस्टीम, स्वमान। अगर हम इसके साथ साथ स्वमान का भी अभ्यास करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस ही इतने अच्छे हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे रफ व्यवहार फिर नहीं करेगा, हमारे सामने आते ही उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, उसके बोल बदल जाएंगे। लेकिन ये काम भी हमें स्वयं करना होगा और इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि हम बहुत स्वीट हैं, हम बहुत पोलाइट हैं, इट्स ओके, लेकिन दूसरे व्यक्ति तो वैसे नहीं है ना, वो तो न जाने कैसे कैसे हैं, तो उनके व्यवहार को देखकर भी हमें अपनी स्वीटनेस, अपनी पोलाइटनेस, अपनी ह्यूमिलिटी को समाप्त नहीं करना है।
जी, क्योंकि एक बुरे व्यक्ति को देख करके मैं अपनी अच्छाई को समाप्त ना करूं। और साथ ही जो बात आपने स्वमान की कही रहता है जी, उस पर हम थोड़ी सी अवश्य आपसे प्रकाश चाहेंगे, आज समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा चल रही है व्यक्तित्व विकास की, इसे हम आपके साथ जारी रखेंगे। आज जो सुंदर बातें आपने हमारे दर्शकों के सम्मुख रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि व्यक्तित्व विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, और उसमें भी शारीरिक व्यक्तित्व के साथ साथ व्यावहारिक व्यक्तित्व बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से, दूर से, शारीरिक रूप से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यदि आप उसके व्यवहार में आते हैं और वो कर्कश है, उसके बोल में शालीनता नहीं है या वो गालियों का उपयोग करता है, तो निश्चित रूप से उसके शारीरिक व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने बोल में मधुरता को शामिल करें, शालीनता को शामिल करें और अपने व्यवहारिक व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखें। आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।